नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा, प्रदेश के युवाओं को विदेशी भाषाएं सिखाने के लिए कल से विशेष कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से दुष्कर्म पीड़ितों के 20 सप्ताह से अधिक के गर्भपात संबंधी कानून में संशोधन पर विचार करने को कहा। प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण कल से, लोग 15 मई तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए जीरो बैलेंस बचत खाता शुरू किया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने और महिलाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश की बेटी पढ़ेगी तभी राजस्थान आगे बढ़ेगा। श्री शर्मा आज पाली के रोहट में नवनिर्मित कन्या महाविद्यालय के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि कल जयपुर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके माध्यम से युवाओं को विदेशी भाषाएं सिखाई जाएंगी ताकि वे विदेशों में भी रोजगार प्राप्त कर सकें। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार सुधार के कई काम कर रही है।
हमने ढाई वर्ष में 71 नए राजकीय महाविद्यालय खोले हैं, 185 नए राजकीय महाविद्यालयों के भवन बनाए हैं। 5 साल में केवल 57 महाविद्यालय के भवन बनवाए थे, हमने 2 साल के अंदर 185 बनवाए हैं। हमने विश्वविद्यालय महाविद्यालय के भवन का निर्माण किया है, 125 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। पीजी स्तर पर 50 और बनाए हैं। यूजी स्तर के 73 महाविद्यालयों को नए विषय दिए। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान में 330 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया है।
ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के तहत आज अहमदाबाद में इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कृषि, एग्रीटेक, डेयरी और सहकारिता क्षेत्र में निवेश और साझेदारी की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस दौरान नीति निर्माता, निवेशक, स्टार्टअप्स और उद्योग जगत के प्रतिनिधि एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी इसमें शिरकत करने का कार्यक्रम है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को दुष्कर्म पीड़िताओं के लिए गर्भपात की कानूनी समय सीमा में संशोधन करने का सुझाव दिया है। अदालत ने कहा कि दुष्कर्म के कारण हुए अनचाहे गर्भ को 20 सप्ताह के बाद भी समाप्त करने की अनुमति देने के लिए कानून में बदलाव किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने एक 15 वर्षीय बालिका की 30 सप्ताह की गर्भावस्था को हटाने की अनुमति देते हुए ये टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि दुष्कर्म जैसे मामलों में समय सीमा के नियमों को कठोरता से लागू नहीं किया जाना चाहिए। यदि मां को कोई चिकित्सकीय खतरा नहीं है तो अंतिम निर्णय पीड़िता की इच्छा पर ही निर्भर होना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व को संदेश दिया है कि भारत किसी भी परिस्थिति में किसी भी आतंकवादी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगा। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन के दूसरे चरण में श्री सिंह ने कहा कि भारत अब उस पुरानी मानसिकता के साथ आगे नहीं बढ़ता जहां देश पर आतंकवादी हमले होते रहें और केवल कूटनीतिक बयान जारी किए जाते रहें। उन्होंने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का केंद्र और भारत को सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र बताया।
हमारे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने भी समय समय पर यह साबित किया है कि वह केवल शांति काल की जरूरतों के लिए नहीं, युद्ध काल की तेज आपूर्ति के लिए भी वह तैयार है। हालांकि उस बीच हमें न्यूक्लियर हमले तक की धमकी दी गई, लेकिन हम उस ब्लफ में नहीं आए। हमने उन धमकियों को नकारते हुए, कोई तवज्जह न देते हुए वही किया जो करना था, जो राष्ट्र हित में जरूरी था, और यही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यानी नई दुनिया का नया भारत।
केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर भारत के आत्मसम्मान, दृढ़ता और अदम्य भावना का प्रतीक है। श्री शेखावत ने आज नई दिल्ली में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व यात्रा का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। उन्होंने सभी से अपनी संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए लगातार प्रयास करने का आह्वान किया।
भारतवासी भारत के इस अदम्य जिगीविषा की चेतना का स्मरण करते हुए संकल्पबद्ध हों कि भविष्य में भारत के किसी भी सभ्यता के विकास को कहीं कोई चोट न पहुंचा पाए। भारतीयों में अपने अतीत के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति, उनकी बार बार उठ भी गिराए जाने के बाद भी उठ खड़े होने की जो जिगीविषा थी, उससे एक प्रेरणा ले सके।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण कल से शुरू होने जा रहा है। भारत की इस पहली डिजिटल जनगणना के तहत नागरिक 15 मई तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक प्रगणक घर घर जाकर मकानों के सूचीकरण का काम करेंगे। इसी कड़ी में कोटपूतली बहरोड की जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता ने आमजन से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि स्वगणना पोर्टल पर जानकारी दर्ज करने के बाद नागरिकों को एक SEID प्राप्त होगी।
इस बार भारत सरकार द्वारा स्वगणना भी इसमें जोड़ा गया है। सभी निवासी अपनी स्वगणना पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। मेरी आप सबसे यह अपील है कि आप इस प्रोग्राम में हिस्सा बने, स्वगणना कर अपने आप को इससे जोड़े। इसका एक पोर्टल है sc.census.gov.in। इस वेबसाइट पे जाकर आप सेल्फ इन्यूमरेशन करें और जब भी इन्यूमरेटर्स आपके घर पर आए तो उनको सही एवं सटीक सूचना दें और राज्य सरकार एवं भारत सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा बने।
बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर राज्य के सभी अभयारण्यों में कल से वन्य जीवों की गिनती की जाएगी। ये गणना कल शाम 5 बजे से शुरू होकर 2 मई शाम 5 बजे तक वाटर होल पद्धति से की जाएगी। जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में इस विशेष अभियान के लिए 44 जल स्रोत चिन्हित किए गए हैं। DFO ब्रिजमोहन गुप्ता ने बताया कि गणना की सटीकता के लिए 12 प्रमुख स्थानों पर कैमरे भी लगाए गए हैं। हर मचान पर एक तकनीकी कर्मचारी और एक स्थानीय ग्रामीण तैनात रहेगा।
जहाँ भी हमारे जो वाटर होल सेंसर जहाँ पर वाइल्ड लाइफ का प्रचुर मात्रा में वाइल्ड लाइफ आता है, उन क्षेत्रों का चिन्हित करके वहाँ पर हाइट बनाई गई है उसके वाटर होल से थोड़ा दूर और वहाँ पर हमारे जो 2 या 3 कर्मचारी बैठेंगे जो उनके बैठेंगे और उनका जो भी वहाँ पर वाइल्ड लाइफ आएगा उसका आकलन करेंगे। कोशिश की जा रही की जो वाटर होल है वहाँ पर इस बार कैमरा टैप भी लगाया जाए।
पाली जिले के जवाई क्षेत्र में भी 73 वाटर पॉइंट्स पर 140 सदस्य वन्य जीवों की निगरानी करेंगे। यहां पैंथर, भालू और नीलगाय सहित अन्य जीवों की गिनती के लिए GPS और कैमरा ट्रैप की सहायता ली जा रही है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने ग्रामीण इलाकों में महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त करने के लिए एक विशेष बचत खाता शुरू किया है। इस बैंक का उद्देश्य महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। पेश है एक रिपोर्ट।
संचार मंत्रालय के अधीन शुरू किए जा रहे इस खाते की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें कोई भी न्यूनतम राशि रखने की बाध्यता नहीं होगी। ये पूरी तरह जीरो बैलेंस वाला खाता होगा और इस पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। समूह के सदस्य डाक विभाग के विशाल नेटवर्क और डाकिये के माध्यम से अपने घर पर ही बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। खाते में अधिकतम 2 लाख रुपए तक की राशि जमा की जा सकती है जिस पर तिमाही आधार पर ब्याज मिलेगा। इस पहल से स्वयं सहायता समूहों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली का हिस्सा बनने में मदद मिलेगी। समाचार कक्ष से माधुरी वशिष्ठ।
और अब मौसम। प्रदेश में आज कई स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। कहीं कहीं ओले गिरने के भी समाचार हैं। सवाई माधोपुर के जामुलखेड़ा, रावल, छारोदा सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई। भरतपुर में तेज अंधड़ चला और इसके बाद बारिश हुई। नागौर में भी जिला मुख्यालय और आसपास के इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। राजधानी जयपुर में कुछ इलाकों में दोपहर बाद मौसम का मिजाज बदला। दिनभर कड़ी धूप के बाद अचानक आसमान में बादल छा गए। इसके बाद तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात हुई। बाड़मेर में भी बादल छाए हुए हैं, इससे लोगों को चिलचिलाती धूप से थोड़ी राहत मिली। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट की संभावना है। अगले 3-4 दिन आंधी चलने और साथ में कहीं कहीं हल्की बारिश के आसार हैं। कोटा में राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड द्वारा कल से विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से शहरवासियों को उनके घर पर ही पाइपलाइन से घरेलू गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। संस्था के प्रबंध निदेशक विनय पाटनी ने बताया कि ये शिविर 8 मई तक आयोजित होंगे। कल सुभाष नगर फर्स्ट में शिविर लगाया जाएगा। इन शिविरों का उद्देश्य गैस नेटवर्क वाले क्षेत्रों को एलपीजी मुक्त बनाना है। डूंगरपुर जिले में एमएसपी पर गेहूं खरीद का काम जारी है। प्रशासन की ओर से सभी व्यवस्थाओं पर निगरानी की जा रही है। इसी कड़ी में आज जिला कलेक्टर देशल दान ने डूंगरपुर के गेहूं खरीद केंद्र और वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के गोदाम का निरीक्षण किया। उन्होंने अनाज की गुणवत्ता, भंडारण सहित सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए ताकि अधिक से अधिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल सके। प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। डीग जिले में स्कूली बच्चों और शिक्षकों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम और पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी दी गई। इन शिविरों का उद्देश्य विद्यार्थियों को कानूनी रूप से सशक्त बनाना ताकि जरूरत पड़ने पर वे अपनी सुरक्षा कर सकें। उधर सवाईमाधोपुर में साइबर सुरक्षा पर आयोजित कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव समीक्षा गौतम ने ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड और सोशल मीडिया हैकिंग से बचाव के तरीके बताए। उन्होंने किसी भी धोखाधड़ी की स्थिति में तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 यानी 1930 पर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, प्रदेश के युवाओं को विदेशी भाषाएं सिखाने के लिए कल से विशेष कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से दुष्कर्म पीड़ितों के 20 सप्ताह से अधिक के गर्भपात संबंधी कानून में संशोधन पर विचार करने को कहा। प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण कल से, लोग 15 मई तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए जीरो बैलेंस बचत खाता शुरू किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार, अलविदा।